हरे कृष्ण। हम श्रीमद् भागवत से पढ़ रहा है षष्ठ कांड नवम अध्याय श्लोक संख्या 36। नहि विरोधा उभयं भगवत्या परिमिता गुणागुणम् ईश्वरे अनवगाय महात्म्ये सर्वाचैनी चिना विकल्प वितर्क विचार प्रमाण भास कुतर्क शस्त्र कलिलंत करणाशाय दूरावग्रह वदेनम् विवादनावसरा उपराता समस्त मया मये केवल इवत्मायाम अंतदायको नातो दुर्गत इव भवति स्वरूप द्वया भवत् शब्दात् ना नहीं ही निश्चय ही विरोध विरोध उभयम् दोनों भगवती भगवान में ऊपर उपरिमिता असीम गुणगाने जिसके दिव्य गुण ईश्वरे परम नियंता में अनवगाय से युक्त महात्म्य अतः शक्ति तथा महिमा अर्वचिन्न आधुनिक विकल्प विकल्प वितर्क विरोधी तर्क विचार विचार प्रमाण अभास अपूर्ण प्रमाण कुतर्क विकार के तर्क शास्त्र अवैध धर्म ग्रंथों के द्वारा कलिल विक्षुब्ध अंतकारण मन आश्रय जिसकी शरण दुरवग्रह दुराग्रहों से वादीना सिद्धांतवादियों का विवाद जागरों का अनवसरे सीमा के बाहर उपरत हटाकर समस्त जिनसे सब माया माये माया केवले अकेला अद्वितीय एवं निस्संदेह आत्ममायाम माया जो सब कुछ बना बिगार सकती है तर्धाय बीज में रखकर का क्या नु निसंदेह अर्थ अर्थ दुर्घट असंभव इव मनो भवति है स्वरूप प्रकृतियां द्वाया दो के अभवत कमी से तत्पर्य अनुवाद और तत्पर्य श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद हे भगवान, सभी विरोधों का आप में निरोधन होता है। हे ईश्वर, चूंकि आप परम पुरुष अनंत दिव्य गुणों के आगर परम नियंता है, अतः आपकी असीम महिमा बद जीवों की कल्पना के परे है। अनेक सिद्धांतवादी बिना जाने के कि वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क झूठे होते हैं और फैसले अनिर्णित है, अनिर्णित है, क्योंकि उनके पास आपको जाने का कोई वैध प्रमाण नहीं है। चूंकि उनके मान धर्म ग्रंथों के जूते निष्कर्षों से विक्षुब्ध रहता है, अतः वे यहाँ नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है। यही सही सही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे हैं। आप अद्वितीय है, अतः आप में करणीय तथा अकरणीय सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं है। आपकी उस शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है। आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वैत से रहित है, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। तत्पर्य आत्मनिर्भर होने के कारण श्री भगवान दिव्य आनंद से ओतप्रोत आत्मराम है। वे दो प्रकार से आनंद उठाते हैं, जो वे प्रसन्न होता है और जब वे दुखी होते हैं। उनमें भेद तथा विरोध का कर पाना कठिन है, क्योंकि इनका उदय उन्हीं से होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तथा प्रभाव के आगर है। उनकी शक्तियों का बार बार नहीं है, वे समस्त दिव्य गुणों की खान है। इस संसार का कोई भी दुष्कृत्य उनमें है रह नहीं सकता। वे दिव्य तथा चिन्मय है, अतः उन पर भौतिक सुख तथा दुख की अवधारणाएं लघु नहीं होती। यदि श्री भगवान में विरोधी बातें मिले तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वास्तव में उनमें कोई विरोध नहीं है, उनके सर्वोपरि होने का यही अर्थ है। सर्वशक्तिमान होने के कारण उनका अस्तित्व होने या अस्तित्व ना होने के विषय में बद्ध जीवों के तर्क लघु नहीं होते। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके शत्रुओं का प्रसन्नतापूर्वक वाद करते हैं। उन्हें संहार तथा पालन दोनों में प्रसन्नता होती है। ऐसी अद्वैतता न केवल भगवान पर वरन उनके भक्तों पर भी लागू होती है। वृंदावन में ब्रजभूमि की बलें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साहचर्य का दिव्य आनंद प्राप्त करती है। और जब कृष्ण तथा बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो उनके वियोग में भी वे वैसे ही दिव्य आनंद का अनुभव करती है। भौतिक कष्ट या आनंद का श्री भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्तों के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठाता। यद्यपि कभी कभी ऊपर से यह कहा जाता है कि वे कष्ट में है यह प्रसन्न है। जो आत्मराम है वो दोनों स्थितियों में आनंद मग्न रहता है। जो भक्त है वे श्री भगवान के अथवा उनके भक्तों के इन विरोधों को नहीं समझ सकते। अतः भगवद गीता में भगवान कहता है, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही दिव्य लीला समझी जा सकती है। अभक्तों के लिए वे कल्पनीय है। अचिंत कालु ये भावना तमस्तकना योजयेत, अभक्तों के लिए परमेश्वर तथा उनका रूप नाम लीलाएं तथा सज सामग्री सभी अकल्पनीय है। मनुष्य को चाहे कि तर्क के द्वारा वे ऐसे सत्यों को समझने के प्रयास ना ही करें। तर्क से परम सत्य भगवान के विषय में सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामयं ददाति सापदंतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितंतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनशतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललितश्रीविशकन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिककांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। पंचकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च परीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिर्नाम हरिर्नाम एव केवलम्, कुलं नास्त्येव 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 गत्यरन्यताम्। तो यहाँ पर इस अध्याय में देवताओं परम पुरुष भगवान को अलग अलग श्लोक प्रस्तुत कर रहा है, उनकी गुणगान कर रहा है। इस श्लोक में कहता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, अपरम पुरुष है, दिव्य गुण के आगर है, परम नियंता है और बद जीवों आपको नहीं समझ सकता है। वास्तव में सिर्फ शुद्ध वैष्णव भगवान को समझ सकता है। लेकिन जैसे यहां पर भी उल्लेख किया है कि तर्क के माध्यम से, भौतिक बुद्धि से, मन से, न्याय से भगवत को नहीं समझ सकता है, किंतु जब भगवान के शरण में आता है, सबसे पहले भगवान के प्रतिनिधि के पास जब पहुंचता है और शुद्ध वैष्णव से पूछताछ कर रहा है भगवान के बारे में, भक्ति मार्ग आध्यात्मिक जीवन के बारे में जब पूछताछ कर रहा है, और लेकिन सिर्फ पूछताछ पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो गुरुजन बताता है, उत्तर देता है और उपदेश देता है, व्याख्या देता है, इसका सिर्फ श्रवण नहीं करना चाहिए किंतु इसके अनुसार चलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो गुरुजन के पास जाता है, वैष्णव के पास जाता है, कृपा मांग रहा है, पैर छूता है और ये भी बोलता है आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है, कुछ इसका फल भी मिलता है, लेकिन वास्तविक गुरु के आशीर्वाद मिलना है तो तब उनके उपदेश आदेश व्याख्या जो देता है इसके अनुसार चलना है अच्छी तरह से, तब वास्तविकों के आशीर्वाद मिलता है। और जब श्री गुरु के आशीर्वाद मिलता है, इसका यह है कि भगवान के आशीर्वाद मिल गया है, क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान की कृपा श्रीमूर्ति है, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति है श्री गुरु, तब भगवान को समझ सकता है गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो ये देवता लोग समझ सकता है भगवान की कृपा से। और यहाँ पर कहता है कि मतलब उनकी गुण गान करता है, भगवान के अनंत गुण है, भगवान के गुण पूरा समझना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा बताने के लिए पूर्वाचार्यों ने स्वस्थ में उल्लेख किया है कि भगवान के कैसे गुण है, जिसे श्रील गोस्वामी पाद उन्होंने उल्लेख किया है श्री भक्ति रसमृत सिंधु में कि भगवान के 64 गुण है। बस में भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण है। दूसरे भगवान जो है जैसे विष्णु रामचंद्र भगवान, उनके पास 7 गुण है, 4 गुण सिर्फ कृष्ण के पास है, दूसरे के पास नहीं है। वेणु मधुरिया, रूप मधुरिया, लीला मधुरिया और प्रेम मधुरिया, ये अद्भुत भगवान के, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत गुण है। जो ब्रज में जब कृष्णा लीला में लीन है, उनके नित्य सिद्ध परिकारों के साथ है, आदान प्रदान होता है, तब वे अनुभव कर सकते हैं भगवान के अद्भुत गुण। लेकिन उस अवस्थ पे ये नहीं समझ सकता है कि ये भगवान है, ये सोचते ये मेरे प्रिया है, प्राण प्रिया है, भगवान के अद्भुत लीला है, भगवान अद्भुत है, उनकी कृपा से हम कुछ समझ सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं समझ सकते भगवान के बारे में। भक्त भी शुद्ध वैष्णव भी सब कुछ नहीं समझ सकते भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान असीमित है, लेकिन जो जरूरत है ये समझ सकता है। और ये बात है कि शुद्ध वैष्णव के पास प्रेम है कृष्ण के प्रति, और प्रेम तो ये ज्ञान से परे है, और लेकिन फिर भी शुद्ध वैष्णव के पास ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जो बौद्धिक ज्ञान से परे है, आध्यात्मिक है, दिव्य है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ज्ञान यह है कि हमको भगवान की सेवा करना है प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म नावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमम। रूप गोस्वामी पाद ने प्रस्तुत किया है ये श्लोक और भक्ति और समृद्ध सिंधु में कि कैसे प्रेम होने चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए। अन्याभिलाषित शून्यम कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण के अनुसार सब कुछ करना है। ऐसा ना है कि भगवान के लिए कुछ कर रहा है लेकिन बदले में हमको कुछ मिलना है। जैसे बहुत सारे लोग भगवान के पास जाते, मंदिर में जाता है, भगवान को कुछ अर्पण कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अपने लिए तो ज्यादा रखता है, करोड़पति है और 100 रुपये भगवान को देता है। ठीक है, भगवान संतुष्ट है लेकिन देखता है कितना रख दिया अपने लिए, और इंद्र तृप्ति में लीन है। लेकिन अगर भगवान के पास जाता है, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी यथासंभव यथाशक्ति कुछ अर्पण कर रहे हैं प्रेम से, तो भगवान इससे संतुष्ट हो जाता है। और तब वास्तविक प्रेम के आदान प्रदान होता है। तो श्री कृष्ण परम दयालु है, और जैसा हम आगे जाने की प्रयास कर रहे हैं, एक पाद भगवान की ओर चले जाता है तो भगवान 10 पाद हमारी ओर चले जाता है, हमको खींचता है जिससे हम उनके पास पहुंच सकता है, कभी कभी जबरदस्ती से, क्योंकि बद्धावस्था में भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक भावना है, तो कभी कभी भगवान के बारे में चिंतन कर रहा है, सोचता है, भगवान के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने लिए कर रहा है। ये कनिष्ठ अधिकारी प्रकृत भक्त, तो इसलिए वे भी नहीं समझ सकता है भगवान के अनंत गुण, दिव्य गुण। तो भगवान को समझने के लिए आध्यात्मिक वस्तु पर पहुंचना है, तीन गुण से परे होने चाहिए, तब समझ सकता है कि जो भी भगवान कर रहा है ये दिव्य है, ये अच्छा है। जिस यहाँ पर उल्लेख किया है, कभी कभी किसी असुर को मार डालता है तो कोई सोचता है कि ये दूसरे को मारता है, ये तो ठीक नहीं है, दयालु होने चाहिए भगवान। लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है तो ये स्वाभाविक है कि उनको दंड देना है। लेकिन जब भगवान दंड देता है, ये प्रेम से कर रहा है, विरोधी के हित के लिए है, अगर उनको मैं मार डालता है फिर भी उनके हित के लिए है, इससे उनके कलमाश, उनके कुभावना, जो कुभाव जो होता है, जो गलत भाव, इसका भी नाश कर रहा है, जिससे अगले जन्म में भक्ति मार्ग में प्रवेश कर सकता है। और कभी कभी जब किसी को मार डालता है, ये एक प्रकार के मुक्ति मिल सकता है, ये असुर लोग, जिससे सहुज्य मुक्ति भगवान के शरीर में प्रवेश कर सकता है, यह ब्रह्म ज्योति है। लेकिन यह वास्तविक मुक्ति नहीं है, बहुत समय के लिए तो ब्रह्म ज्योति में रहना है, यह वास्तविक मुक्ति नहीं है। यहां से तो आया है बद जीव, बद्ध वस्त्र से। दो प्रकार के जीव है, नित्य सिद्ध और नित्य बाधा। नित्य सिद्ध जो निरंतर भगवान की सेवा में लीन है अनादि काल से, और उनकी ज्ञान की संभावना नहीं है। और इसके बाद दूसरे जो नित्य बाधा के जीव है, ये भगवान के नित्य सेवक भी है नित्य उनके स्वरूप है कि वे कृष्ण दास है, जिवेरो सोपो कृष्ण ने नित्य दास। लेकिन आध्यात्मिक बाध वस्त्र में है, मतलब यह है कि जिससे जो ब्रह्म ज्योति में है ये मुक्त वस्त्र में है, लेकिन सेवा में लिए नहीं है, सेवा नहीं करे भगवान के, सुप्त रूप में है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इस भौतिक स्थिति से तीन गुणों से परे है, लेकिन बाधावस्था में है, आध्यात्मिक बाधावस्था में है, तो यह वास्तविक मुक्ति नहीं है। तो बहुत समय के लिए वहां पर रहते, इसके बाद जब यह भौतिक जगत प्रकट हो जाता है, जो कभी प्रकट है कभी अप्रकट है, यह भौतिक जगत जब प्रकट है, कोई बद्ध जीव जो ब्रह्म ज्योति में है इसमें गिर जाता है। इसके बाद भगवान की आयतु की कृपा से या सुर वैष्णव की आयतु की कृपा से वे समझ सकता है कि हम वास्तव में भगवान के दास है, भगवान के नित्य दास है। और उसके बाद भजन करते करते अपना आध्यात्मिक स्वरूप, भगवान के स्वरूप, दिव्य स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप और दिव्य संबंध, नित्य संबंध अनुभव कर सकता है, तब लीला में प्रवेश कर सकता है। और जब लीला में प्रवेश किया है फिर से इस भौतिक जगत में गिरना की संभावना नहीं है। तो अगर किसी को मार डालता है ये भी उनकी कृपा है। और कभी कभी जैसे एक बार जुधिष्ठिर को बोल दिया झूठ बोलने के लिए, मतलब, लेकिन जो भगवान कहता है ये झूठ नहीं है, ये साई है, जो भगवान भी कहता है, बोलता है, सोचता है, ये दिव्य है। भौतिक ये द्वैत जो इस भौतिक जगत के द्वैत जो है, द्वैतवाद तो है, कहता है लोग, सुख और दुख है, अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, इससे परे है, जो भगवान भी कर रहा है ये दिव्य है, ये आध्यात्मिक है, ये सुंदर है। जैसे कि कृष्णा लीला में झूठ बोलता है बच्चे के रूप में, तो उनके वास्तविक रूप तो किशोरावस्था में है, लेकिन जब इस भौतिक जगत में अवतरित होता है तो उनके दिव्य जन्म होता है। इसके बाद तो उनके बाले लीला है, वहाँ पर कई बार झूठ बोलता है, लेकिन जब कृष्ण झूठ बोलते हैं ये वास्तविक झूठ भी नहीं है, ये परम सत्य है। वो चोरी करता है, मक्खन चोर, लीला में ऐसा लगता है कि चोर कर रहा है, चोरी कर रहा है कि ये चोर है, लेकिन जब भगवान को समझ सकता है कृष्ण कौन है, तब देख सकता है कि जो भी कुछ लेता है ठीक है लीला में चोरी कर रहा है, लेकिन वास्तव में अपना तो समान है। मुक्त रंग तपसम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोग के माहेश्वर है, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत कहाँ से आया, कृष्ण से आया है। सब दूसरे अवतार जो होता है भगवान की विस्तार रूप है, शक्ति, मूल शक्ति श्रीमती राधारानी, ये श्रीमती राधारानी कृष्ण के ही है, अंतरंग शक्ति है, परम प्रिया, परम प्रेष्ट गोपी है। और जीवात्मा भी भगवान के अंश है, मामेवाम से जीवलों के जीव बुद्ध सनातना, हर जीवात्मा भगवान के अंश है। और ब्रज में तो ब्रज कृष्ण का ही है, कृष्ण का स्वरूप है, कोई कहते बलराम का स्वरूप है ये भी साई है, कोई कहते रारण के स्वरूप है साई है, क्योंकि वृंदावन धाम के सच्चित आनंद स्वरूप है, सात है, सात मतलब नित्य है। तो अधिष्ठात्र देव ये जो धरण शक्ति जो होता है ये बलराम है, संदिनी शक्ति, अच्छी शक्ति, जो ज्ञान शक्ति जो होता है इसके श्रीमूर्ति है भगवान श्री कृष्णा, जो मूल रूप है, दिव्य ज्ञान देता है। और अलादिनी शक्ति श्रीमती रानी है, अनंत प्रदान देती है। तो वृंदावन धाम सत चित आनंद विग्रह है, इसमें सब सम्मिलित है। तो भगवान की कृपा से जब गुरु के अनुसार भजन कर रहा है, धीरे धीरे समझ सकता है सब कुछ भगवान के बारे में, उनकी दिव्य रूप, उनकी दिव्य लीलाएं। तो भगवान के धाम ब्रज धाम पूजनीय है, जैसे भगवान कृष्ण पूजनीय वैसे ही वृंदावन धाम पूजनीय है। भगवान की कृपा चाहिए, सबसे पहले गुरु की कृपा, इसके बाद भगवान की कृपा, और ये है कि वृंदावन धाम की कृपा, ब्रिजवासियों की कृपा चाहिए, तब सब कुछ समझ सकता है। तो वहाँ और ब्रज में सब कृष्ण के प्रिय भक्त है, कृष्ण सबके प्राणनाथ है, वो सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है। सब गोपियां जो किशोरियां जो है, श्रीमती रानी ललिता विशाखा, सब कुछ कृष्ण के लिए कर रही है। और जो जैसे यशोदा माँ मक्खन बनाती है कृष्ण के लिए, और दूसरी गोपियां जो गोप और गोपियां की माताएं हैं, ये भी मक्खन बनाती है घर पे, किसके लिए? कृष्ण के लिए। उनके विचार भी है, और ये भी सोचती है हम मक्खन बनाते हैं लेकिन अच्छा रहेगा अगर कृष्ण मेरे पास आवे और ये लेवे, उनको देना चाहती है वास्तव में। इसलिए कृष्ण वहाँ पर जाता है, क्योंकि भाव है कृष्ण के लिए है, और वैसे ही तो कृष्ण के लिए अर्पण करना चाहती है। और जो सब सामग्री भौतिक जगत के, आध्यात्मिक जगत के, भौतिक जगत सब सामग्री सब कृष्ण से आया है, तो कृष्ण का ही है। भूमि रपो न लो वायो कम मना बुरी अरे बचा, ये कृष्ण से आया है। पृथ्वी जल हवा आकाश सब पदार्थ, भौतिक पदार्थ जितने भी है कृष्ण से आया है, प्रकृति से, जो भगवान के बहिरंग शक्ति है। जब ये अप्रकट है, इसका नाम है प्रधान, भौतिक जगत के जो पदार्थ जो होता है प्रधान अप्रकट रूप में, क्योंकि हमेशा के लिए नहीं है ये भौतिक जगत। जब कृष्ण की इच्छा प्रकट हो जाता है, जब अप्रकट है ये प्रधान कहलाता है, और जब प्रकट हो जाते भगवान की कृपा से प्रकृति है कहलाता है, और अलग अलग पदार्थ है। तो ये सब कृष्ण से वास्तव में आया है। तो इसलिए जो भी कुछ बनाते हैं तो कृष्ण के लिए बनाते हैं, और कृष्ण का ही है, तो कृष्ण को देना चाहती है तो कृष्ण लेता है, तो चोर ना ही है। देना चाहती है गोपियां, और कृष्ण का ही है, तो इसलिए जब देखता है जो भी कुछ कृष्ण कर रहा है ये दिव्य है, इसमें कोई दोष नहीं है। वैसे शुद्ध वैष्णव के, जो भगवान के शुद्ध वैष्णव है, वे भी जो भी कर रहा है कृष्ण के अनुसार कर रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है, इसलिए भी ये भी उनके भी कोई दोष नहीं है। सद्गुण सद्पन्न जो भी कर रहा है दिव्य है शुद्ध वैष्णव के, क्योंकि हमेशा भगवान की सेवा में लीन है, भगवान के लिए सब कुछ कर रहा है, जो कृष्ण चाहते ये कर रहा है, ये शुद्ध वैष्णव है, उनके भी कोई दोष नहीं है। लेकिन जो शुद्ध अवस्था में नहीं है, तो सदक भी हो दूसरे लोग, तो उनके गुण और दोष है, और प्रयास करना है कि हमको जिससे हम आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकते और रह सकता है। और ये भी है कि दूसरे भक्त के हमको सबसे पहले देखना है कि ये भी अलग अलग, तो जब पढ़ना है जैसे पिताजी गुरु जान, तो उनको भी देखना है कि शिष्य या बच्चे क्या कर रहा है, और उनको देखना है ये गलत है और ये ठीक है। जो ठीक है तो बोलते बहुत बहुत अच्छा किया है लाला, जो आपने किया बहुत अच्छा किया है तो ऐसे कहते उनको आशीर्वाद भी देता है, प्रेरणा देता है, जिससे वे आगे जा सकते। लेकिन गलत काम कर रहे हैं उनको बताना है, दंड भी देना है कभी कभी, गुणो दोष देखना है गुरुजान को, लेकिन प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, ये जरूरत है। अगर कोई किसी पार में नहीं है दूसरी समय तो दोष देखने जरूर नहीं है, लेकिन गुण देखना, भक्त की गुण कैसा है, और इसमें तो इस भावना में रहना चाहिए कि सब भगवान के भक्त अच्छे हैं। और लेकिन जो पार में है उनको देखना है। तो ये इसमें यहाँ पर जो इस श्लोक जो देवता लोग उच्चारण कर रहे हैं, इससे तो देख सकता है कि वैष्णव की भावना कैसे होना चाहिए भगवान के संबंध में, कि निर्मल पुरुष है, निर्दोषी है, यह तो स्वाभाविक है, ये समझना आसान है। लेकिन वैष्णव जो होता है, क्योंकि ये भगवान के सेवक है, और जितना भगवान शक्तिशाली है वो तो नहीं है, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया है कृष्णा चौथी उंगली से, ये शुद्ध वैष्णव भी नहीं कर सकता है। इसलिए कभी कभी हो जाता है कि दूसरे भक्त लोग जो आगे नए है दोष देखता है, शुद्ध वैष्णव के दोष भी देखता है, ये कैसे बोलता है, ये कैसे चलता है, क्या कर रहा है, क्योंकि भावना ठीक नहीं है, क्योंकि साई भावना है कनिष्ठ अधिकारी के। इसलिए सवरानी से रहना चाहिए, विनम्र भाव में रहना चाहिए, ऐसे कर तो हम आगे जा सकता है। तो भगवान की गुण अपार है, अद्भुत है, और ये समझना तो वैष्णव के लिए आसान है, कठिनाई है। लेकिन दूसरे लोग जैसे वैज्ञानिक लोग अभक्ता, उनके लिए भगवान के जो गुण जो है दिव्य गुण, तो ये नहीं समझ सकता है, उनके परे है, और ये नहीं मानता कि ये भगवान है। और जब सुनता है कि भगवान श्री कृष्ण दाएं हाथ से छोटी उंगली से पर्वत उठाया है, ये सोचिए कि कोई कहानी है, सत्य नहीं है, ऐसे बोला है तो कहानी है, ये सत्य नहीं है। अभक्त नहीं समझ सकता है, वैज्ञानिक लोग नहीं समझ सकता है भगवान के दिव्य रूप गुण एवं लीलाएं नहीं समझ सकता है। लेकिन भक्त लोग विशेष करके जो आगे है यह अच्छे तरह से समझ सकता है, लेकिन जो आगे नहीं है यह अच्छे तरह से नहीं समझ सकता है। और इसलिए उनका विनम्र भाव में रहना है और शुद्ध वैष्णव के संग में रहना है, जिससे वे समझ सकता है भगवान के दिव्य गुण। जन्म कर्म चमे दिव्याम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वादि हम पुनः जन्म नायति मामेति स्वार्जुना। लीला में प्रवेश करने के लिए भगवान के रूप गुण जिसे उनकी लीलाएं जन्म कर्म दिव्य जन्म अविर्भाव कृष्ण के, और उनके कार्य अभी भी दिव्य है, जो अच्छे तरह समझ सकता है तत्व, तत्व में वास्तव में वेति तत्वतः, वेति समझना, वास्तव में तत्वतः अच्छे तरह से अनुभव जो कर सकता है, वे लीला में प्रवेश कर सकता है भगवान के, और तब फिर से जन्म लेना जरूरत नहीं है। जब कृष्ण भी कहता है भगवद गीता में, जो वापिस जाता है आध्यात्मिक जगत में उनको फिर से यहां पर आना जरूर नहीं है, और अगर भी आता है तो लेकिन नहीं गिर जाता है, जैसे भगवान भी आता है इस भौतिक जगत में, जब भौतिक जगत प्रकट हो जाता है, लेकिन हमेशा तीन गुण से पारा है, वैसे ही शुद्ध वैष्णव जब भगवान की इच्छा ये भी आ जाता है कभी कभी उनके साथ, तो वे भी तीन गुण से पारे है। तो इसलिए हमको प्रयास करना जिससे हम जल्दी से जल्दी आगे जा सकता है, और कनिष्ठ से मध्यम अवस्था पर पहुंचना है, इसके बाद मध्यम अवस्था पर से उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था पर पहुंचना है, हमको प्रयास करना है, तो इसके लिए विनम्र भाव में रहना है और शुद्ध वैष्णव जो आज्ञा है उनके संग में रहना है, तब जल लिए जा सकता है। और भगवान के दिव्य गुण लीलाएं के श्रवण करना है। और कभी कभी हम नहीं समझ सकता है कि क्यों क्या क्या कैसे किया है क्यों किया है, लेकिन श्रवण करते हुए करते करते जब भगवान की कृपा है यह भी समझ सकता है। और वैसे ही विनम्र भाव में रहते हुए दूसरे के गुण देखना दोष नहीं देखना है, दूसरे के गुणगान करना है लेकिन अपमान नहीं करना है। तो जब विनम्र भाव में रहते हैं और निरंतर विशेष करके तो अलग अलग सेवा करते हुए और विशेष करके भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिव्य नाम उच्चारण करते हुए तो सब कुछ अनुभव कर सकता है और भगवान के पास पहुंच सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा।